अध्याय 9, जापान में सैन्यवाद का शेष भाग, पृष्ठ संख्या 132। कुछ विद्वान तो यह भी कहते हैं कि सैन्यवाद के उदय में सम्राट का सीधा हाथ था। उदाहरणतया डेविड बर्गामिनी का कहना है कि हिरोहितो ने न केवल सैनिक आदेशों पर मोहर लगाकर अपने देश का युद्ध में नेतृत्व किया, बल्कि उन व्यक्तियों का जिन्होंने उनका विरोध किया को अपने गुट के माध्यम से अनोखे पूर्व देशीय षड्यंत्रों, जिनमें धार्मिक छल, ब्लैकमेल और कत्ल शामिल थे, के द्वारा धमकाया। हिरोहितो हैड नॉट ओनली लेड हिज नेशन इन टू वार बाय स्टाम्पिंग मिलिट्री ऑर्डर्स, बट थ्रू हिज कोटेरी हैड ऑल्सो इंटीमेटेड दोज हु अपोज्ड हिम बाई कन्विंग इन विजारे ओरिएंटल इंट्रिग्यूज, इंक्लूडिंग रिलीजियस फ्रॉड्स, ब्लैकमेल्स एंड एसासिनेशन। जैसे एल.ए. हम्फरीज का कहना है कि सैनिकों जिन्हें अपने जीवन में सम्राट और देश के सर्वोच्च मूल्य की भांति अपनाने का प्रशिक्षण दिया गया था, ने पाश्चात्य गणतांत्रिक और शांतिमय विचारधाराओं से जुड़ने को पवित्र सम्राट और विशेष राष्ट्रीय राजनीति के त्याग के रूप में देखा। स्थल और नौसेना के नेताओं का विश्वास था कि केवल वही श्रेष्ठतम राष्ट्रीय प्रशिक्षण दे सकते थे। वैसे तो प्राथमिक विद्यालयों में देशभक्ति के मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन सेना ही उसे उपयुक्त रूप दे सकती थी, क्योंकि उसका नेतृत्व जापान के सबसे अधिक बहादुर और देशभक्त व्यक्तियों के हाथों में था। लेकिन सशस्त्र सेनाओं की एक समस्या थी, 20 वर्ष से अधिक आयु के योग्य मर्दों में से केवल 20% ने ही 1937 से पहले सेना में सेवा की थी। इसलिए 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही सैन्य नेताओं में विभिन्न प्रकार के रास्ते अपने कार्य की पूर्ति के लिए ढूंढने शुरू कर दिए थे। इसका समाधान उन्होंने उन संगठनों की श्रृंखला के प्रयोग द्वारा किया जो या तो सीधे सेना के नियंत्रण में कार्य करते थे और या फिर सेना का उन पर प्रभाव था। ऐसे संगठनों में सबसे पहले 1910 में तेरोची और तनाका ने एक संगठन स्थापित किया जिसका नाम था साम्राज्यी सैन्य आरक्षित संघ, इंपेरियल मिलिट्री रिजर्विस्ट एसोसिएशन। यह एक केंद्रित अर्धसैन्य संगठन था जिसने अपनी शाखाएं गांवों और बस्तियों में स्थापित कर रखी थी। वह सभी मर्द जिन्होंने अनिवार्य सैन्य भर्ती, शारीरिक परीक्षा, कंस्क्रिप्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन पास कर रखी थी, इस संगठन के सदस्य बन सकते थे। 1930 के दशक तक 30 लाख से भी अधिक 20 और 40 वर्ष के बीच आयु के मर्द इस संगठन में कार्य कर चुके थे। इनमें से आधों से ज्यादा ने कभी सेना में नियमित रूप से कार्य नहीं किया था। बड़ी मात्रा में इस संगठन के सदस्य गांव के रहने वाले थे। इस संगठन के सदस्य विभिन्न प्रकार के समाज कार्य करते थे, जैसे कि दमकल सेवा, सड़कों और सिंचाई, साधनों की मरम्मत, बस्तियों का सुरक्षा प्रबंध, सेना के सक्रिय सदस्यों के परिवारों की मदद, स्कूलों के प्रांगणों में ड्रिल करना, देशभक्ति समारोहों में भाग लेना। इन कार्यों में अक्सर कोई जमींदार या उसका लड़का नेतृत्व प्रदान करते थे। इस प्रकार ऐसे संगठनों के द्वारा सेना ने जनसाधारण के स्तर पर अपने समर्थन का काफी मजबूत आधार बना लिया। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने तक हजारों जापानियों ने सेना के संदेश को विद्यालयों और संगठनों के माध्यम से ग्रहण कर लिया था, लेकिन फिर भी जापानी जनसंख्या का वह एक बड़ा भाग छूट गया था। यह वह युवक थे जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा 14 वर्ष की आयु में समाप्त कर ली थी और सेना या आरक्षित बल में भर्ती के लिए कम उम्र के थे। इस कमी की पूर्ति के लिए 1914 से 15 में तनाका और यामागाता के गृह और शिक्षा मंत्रालयों के कई असैनिक अनुयायियों ने मिलकर देश भर के स्थानीय युवा संघों का एकीकरण करने के लिए राष्ट्रीय युवा संघ मुख्यालय, नेशनल यूथ एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स की स्थापना की। वैसे तो यह संघ गृह और शिक्षा मंत्रालयों के अधीन कार्य कर रहा था, लेकिन विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक सैन्य तथा देशभक्ति का कार्य करने वाली इसकी स्थानीय शाखाएं आमतौर पर आरक्षितों के नेतृत्व में कार्य करती थीं। 1930 के दशक तक इस संघ, जब इसका नाम दैनिपॉन रेंगो सेइनेनदान था, के 25 लाख सदस्य बन चुके थे, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण थे। तनाका और उनके उत्तराधिकारी सेना मंत्री अगाकी काजुशिगोए ने 1925 में 4 वर्षीय व्यावसायिक शारीरिक एवं सैन्य प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के अंतर्गत युवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके जापान के युवकों के सैन्य प्रशिक्षण को अंतिम रूप दे दिया। इन केंद्रों में, जो समुदायों के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा चलाए जाते थे, अध्यापकों और स्थानीय आरक्षितों की सहायता से 100 घंटे की सैन्य ड्रिल और 100 घंटे का अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष उन 85% जापानी मर्दों को दिया गया जो माध्यमिक विद्यालय तक नहीं पहुंच सके। प्रारंभ में 4 लाख युवकों को दाखिला दिया गया। जब 1935 में इन केंद्रों को इन जैसे स्थानीय व्यावसायिक विद्यालयों से मिलाया गया, तब इनसे लगभग 20 लाख छात्र जुड़ चुके थे। 1930 के दशक तक सशस्त्र सेनाओं ने अपनी स्थिति को इतना मजबूत और स्वतंत्र बना लिया था कि वह अब जापानी समाज को शक्तिशाली ढंग से प्रभावित कर सकती थी। उग्र सैन्यवादियों ने दो शक्तिशाली प्रवृत्तियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था, पहला विदेशी विस्तार की प्रवृत्ति तथा दूसरा राष्ट्रीय साम्यवाद की पूंजीवाद विरोधी और पाश्चात्य विरोधी प्रवृत्ति। सैन्य मूल्यों के लिए लंबे समय से चला आ रहा जनसाधारण समर्थन, बंधन रहित कानूनी स्थिति तथा अर्ध सैन्य संगठनों का जटिल जाल, ये सभी 1930 के दशक के ऐसे माहौल में एक दूसरे से मिल गए जब जापानी समाज में आपातकालीन स्थिति का एहसास होने लगा था। ऐसे वातावरण में सेना और उसके असैनिक समर्थकों ने उन नीतियों को लागू करवा लिया जिनसे सैन्यवाद को पूरा बढ़ावा मिला। आपातकालीन स्थिति का एहसास 1929 के बाद विश्व आर्थिक संकट और पाश्चात्य शक्तियों द्वारा लगाए गए व्यापारिक बंधनों से भी बढ़ा। जापानी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10 लाख की वृद्धि हो रही थी और इस बढ़ती आबादी के कारण अन्न पूर्ति की समस्या और भी जटिल होती जा रही थी। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में 4 लाख नए कर्मचारियों को हर साल खपाने की क्षमता नहीं थी। कर्जे के बोझ से दबे किसान अपनी आय और भी कम होती देख रहे थे। संपत्ति कुछ बड़े परिवारों के हाथ में केंद्रित होती गई थी। अब अधिकतर जापानी नेता यही विश्वास करने लगे थे कि सेना ही जापानी समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान कर सकती है। जैसा कि डब्ल्यू डब्ल्यू लॉकवुड का कहना है, उस पक्ष के लिए अब स्वर्ण अवसर आ गया था जो हमेशा यही मत प्रकट करता रहा था कि उत्तरदायी दलीय सरकार एक धोखा है और जापान में नेतृत्व की बागडोर फिर से उसके सच्चे देशभक्तों को सौंप दी जानी चाहिए। 1930 के बाद उन सभी नेताओं को जो विदेश मंत्री शिदेहारा किजुरो की तरह अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन और सैन्य समाधानों का विरोध करते रहे, सरकार से बाहर फेंक दिया गया। 1930 के दशक के मध्य में जनरल वातानाबे जातारो और जनरल नगाता तत्सुजान जैसे व्यक्ति भी, जिनकी निसंदेह देशभक्ति का डंका दूर दूर तक बजता था, रिचर्ड स्मैथर्स्ट के शब्दों में उदत देशभक्त सैन्यवादी जगन्नाथ के सामने ढेर हो गए। फेल बिफोर द एक्सलेटिंग पैट्रियोटिक मिलिटरिस्टिक जजमेंट जगरनॉट। 1930 के लंदन नौसैनिक सम्मेलन लंदन नेवल कॉन्फ्रेंस से सैन्यवाद के उदय में एक विशेष मोड़ आया। प्रधानमंत्री हामागुची की मिनसेइतो सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई नौसैनिक परिमितता संधि को अधिकतर जापानियों द्वारा, जिनमें नौसैनिक मुख्यालय का अध्यक्ष कातो हिरोहारू, सेना के नेतागण, विरोधी दल रिकेन सेयुकाय, उग्र प्रतिक्रियावादी तथा अधिकतर जनमत शामिल थे, मुख्य पाश्चात्य शक्तियों द्वारा जापान को परेशान करने और उसकी सुरक्षा को खतरे में डालने के रूप में देखा गया। हालांकि हामागुची ने इस संधि को पारित तो करवा लिया, लेकिन इसके हस्तांतरण और पारित होने के बीच के काल में जो कलहपूर्वक वाद विवाद हुआ, उसने विदेश विरोधी सैन्यवाद की आग में ईंधन का काम किया। 1931 के अंत तक हामागुची की हत्या कर दी गई, उनकी सरकार गिराई जा चुकी थी और अवज्ञाकारी सेना मंचूरिया पर कब्जा कर चुकी थी। अधिक से अधिक लोग अमेरिका और ब्रिटेन से सहयोग के खिलाफ होते जा रहे थे और चाहने लगे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापानी अपनी समस्याओं का समाधान सैन्य रूप से करें। 1930 के दशक तक जापानी गणतांत्रिक आंदोलन, जो पहले ही अपनी कमियों के कारण काफ़ी दुर्बल हो चुका था, अब बिल्कुल बेकार हो गया। दूसरे शब्दों में, जापानी लोकतंत्र की दिशा में चल रहा आंदोलन असफल हो गया। जैसा कि आर.ए. एस्केल्पिनो ने बताया है, गणतांत्रिक आंदोलन की पतली और हिलती तारें बड़ी आसानी से टूटने लगी। सांसद अपने ही दल को बड़ी तेजी से छोड़कर विरोधी दल में शामिल होने लगा। राजनीतिक गुट ही केवल एक ऐसे संगठित शक्ति थे जो राजनीतिक प्रतियोगिता से बद्ध थे, लेकिन ये शक्ति विहीन होते गए, सिद्धांतों में गिरावट आती गई और इनकी लोकप्रियता भी निरंतर कम होती गई। शायद संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना के प्रयत्नों में राजनीतिक दलों की असफलता ही जापानी सैन्यवाद के विकास के लिए अंततः जिम्मेदार थी। 1936 में आरंभ में डायट के भंग होने के बाद मिनसेइतो दल ने, जो तीव्र राष्ट्रवादियों का समर्थक था, से युकाय दल को बुरी तरह पराजित किया। लेकिन अब तक दलीय राजनीति को पुनः स्थापित करने का समय गुजर चुका था। चुनाव के बाद एक सप्ताह में ही 26 फरवरी की घटना घटी। इस घटना से राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा में काफ़ी तब्दीली हुई। सेना की प्रथम टुकड़ी के युवा अफसरों ने सरकार के कई उच्च अधिकारियों का कत्ल कर दिया और मध्य टोक्यो पर कब्जा कर लिया। सेना ने शांति तो कायम कर दी, लेकिन उसने अपने लिए सरकार में भयभीत नरमपंथियों से और भी अधिक भागीदारी प्राप्त कर ली। असैनिक गुटों द्वारा किए गए सैन्य प्रचार के माध्यम से अधिकतर प्रजा को इस बात पर राजी कर लिया गया था कि राजनीतिज्ञ गैर जिम्मेदार और जायबात्सु भ्रष्ट थे। हीरोता, जिन्होंने अब अपनी सरकार कायम की, सेना की इच्छाओं का गुलाम बनकर रह गए। उन्होंने मौजूदा हालात से निपटने के लिए सेना और सरकार को आपसी सहयोग से कार्य करना चाहिए, जैसे विवरण देकर केवल अपनी मजबूर दशा का जायजा दिया। जून 1932 में जापान में अमेरिकी राजदूत जोजेफ क्लार्क ने दशा का सही रूप व्यक्त करते हुए कहा, एक तथ्य निश्चित है कि सेना ही सरकार चला रही है और उसकी स्वीकृति के बिना कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। बदलते हालातों को देखकर अधिकारी वर्ग ने भी अपना रुख बदल लिया। दूसरे शब्दों में, अधिकारी वर्ग सेना की उन योजनाओं का साथ देने के लिए तैयार हो गया था जिनके द्वारा सभी प्रकार के उदार विचारों को कुचला जाना था, और राजनीतिक दलों को भले ही वे चाहे या ना साथ घसीटा जाना था। राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त किए लाभ को खो देने के बाद अगस्त 1926 में हीरोता मंत्रिमंडल ने सेना के 7-सूत्रीय राष्ट्रीय राजनीतिक उद्धार का कार्यक्रम 7-पॉइंट प्रोग्राम ऑफ नेशनल पॉलिटिकल रिनोवेशन को अपना आशीर्वाद दे दिया। इस कार्यक्रम ने सरकार को युद्ध के हथियार बनाने, शिक्षा पर संपूर्ण नियंत्रण करने, अधिक कर लगाने, वाणिज्य और उद्योग पर और पाबंदी लगाने, युद्ध का सामान एकत्रित करने तथा सेना को मंचूरिया में पूरा समर्थन देने पर वचनबद्ध कर दिया। सैनिक भाषा में, इस कार्यक्रम ने देश को उदारवाद से दूर खींचकर और सरकार को नवनिर्माण के दौर में डालकर नियंत्रित और केंद्रित राज्य की नींव रख दी। वाशिंगटन और लंदन की नौ सेना संधियों की अवधि समाप्त होने के एक महीना पहले ही जापान ने नवंबर 1936 में कोमिंतर्न विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते ने जापान की जनता के अकेला पड़ जाने की चिंता को दूर कर दिया। एक निरंकुश देश से बेनकाब और खुला मेलजोल तथा अनैतिक ढंग से हिरोता मंत्रिमंडल के साथ बर्ताव ने निसंदेह सिद्ध कर दिया था कि अब सेना काबू से बाहर हो चुकी थी। जनरल हायाशी द्वारा फरवरी 1937 में बनाया गया मंत्रिमंडल केवल 4 महीने कायम कर पाया। कोनोए के मंत्रिमंडल बनाने के समय तक जापानी सेना ने अपने जाल को मांचुकुओ की सीमाओं के आगे तक फैला लिया था। जब 7 जुलाई 1937 को मार्को पोलो पुल की घटना के बाद चीन जापान का 1937 से 45 का युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका और ब्रिटेन जापान के खिलाफ संयुक्त कार्य करने में असमर्थ रहे। अब जापानी सैन्यवादियों की हिम्मत और भी बढ़ गई, क्योंकि वह जान गए कि जापान की चीनी नीति को लेकर उन्हें अमेरिका तथा ब्रितानिया से युद्ध नहीं करना पड़ेगा। चीन के साथ युद्ध आरंभ होने के बाद सैन्य मूल्य जापानी समाज, राजनीति, संस्कृति, शिक्षा तथा अर्थशास्त्र में घुस बैठे। अनेकों असैनिक मंत्री पद सैनिक अफसरों को दे दिए गए। राष्ट्रीय साधनों को स्थल और नौसेना ने अपने इरादों की पूर्ति के लिए जुटना आरंभ कर दिया। औद्योगिक कच्चा माल, कृषि उत्पादन, मंदिरों की घंटियां और जेवरों तक को युद्ध प्रयास के लिए अभिग्रहित कर लिया गया। कारखानों में पूरे जोरों पर वर्दियां, टैंक, हवाई जहाज, समुद्री जहाज और गोले बनाए जाने लगे। शैक्षिक प्रणाली के विषय विशेष को अब ज्यादा से ज्यादा सैन्यवादी, उग्र देशभक्ति से प्रेरित तथा बेहद राष्ट्रवादी बना दिया गया। पड़ोस के छोटे संघ, नेबरहुड एसोसिएशंस, तानारी गुमी उन क्षेत्रों में खोल दिए गए जहां ये पहले नहीं थे, ताकि जनता को सरकार के कड़े नियंत्रण में लाया जा सके। सेना पुलिस ने असैनिक जनसंख्या पर अपनी निगरानी को बढ़ाने के साथ साथ कड़ा भी कर दिया, और अंत में असैनिक नियंत्रण से छुटकारा पाकर स्थल और नौसेना ने देश की बागडोर संभाल ली थी तथा कूटनीति और युद्ध कौशल से संबंधित फैसले भी स्वयं ही करने आरंभ कर दिए, जिनके बड़े गंभीर परिणाम निकले। 3 नवंबर 1938 को कोनोए ने पूर्वी एशिया में नई व्यवस्था, न्यू ऑर्डर इन ईस्ट एशिया की स्थापना की घोषणा करके दावा किया कि यह सही सच्चे न्याय पर आधारित शांति की एक नई संरचना, ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ पीस बेस्ड ऑन ट्रू जस्टिस थी। असल में यह उस समय सुदूर पूर्व में लागू संपूर्ण संधि प्रणाली का एक तरफा विरोध था। बाद में बर्मा की प्रथम प्रधानमंत्री बा मा, जो एशिया में तोजो के सबसे बड़े समर्थक थे, ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि सैन्यवादियों ने प्रत्येक वस्तु को जापानी दृष्टि से देखा, और उससे भी बदतर वह इस बात पर जोर देते थे कि उनके संबंध रखने वाले दूसरे लोग भी ऐसा ही करें। उनके हिसाब से कोई भी कार्य करने का केवल एक ही ढंग था, जापानी ढंग। केवल एक ही उद्देश्य और हित था, जापानी हित। पूर्वी एशिया के देशों का एक ही भाग्य था, जापान से हमेशा के लिए बंधे हुए अनेकों मांचुकुओं या कोरिया बनना। जैसे जैसे जापान के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और उलझाव बढ़ते गए, विचार और भाषण की स्वतंत्रता पर भी उसका नियंत्रण कड़ा होता गया। पहले से बने नियमों के विषय क्षेत्र को और भी विस्तृत कर दिया गया। 1925 में बनाए गए शांति सुरक्षा कानून को 1928 और 1941 में संशोधित करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नज़रबंदी तथा राजनीतिक कैदियों को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद रखना संभव हो गया। 1941 के राष्ट्रीय रक्षा आश्वासन कानून द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों में हुए वाद विवाद को गोपनीय घोषित कर दिया गया। मंत्रिमंडल की बैठकों से संबंधित किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के प्रयास को कड़ा दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। 1942 में युद्धकालीन अपराधों के लिए विशेष कानून बनाए गए। इन कानूनों के तहत युद्ध से संबंधित विषयों पर जनसभाएं, वाद विवाद और गोष्ठियां अवैध घोषित कर दी गई। पाश्चात्य गणतंत्रों ने जापान के विस्तार के प्रत्येक नए कदम का विरोध किया। उनके साथ बढ़ती स्पर्धा के कारण सुदूर पूर्व का संकट फासीवाद और इसके विरोधियों के बीच हुए विश्वव्यापी संघर्ष का भाग बन गया। 26 सितंबर 1940 को जापान ने जर्मनी और इटली के साथ त्रिपक्षीय समझौता ट्रिपार्टाइट पैक्ट कर लिया। यह समझौता जापान ने इसलिए किया था क्योंकि उसके और फासीवादियों के शत्रु साझे थे, न कि किसी मूल सामूहिक रचनात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इस समझौते के अनुसार जर्मनी और इटली यूरोप में अपनी नई व्यवस्था कायम कर सकते थे और पूर्वी एशिया जापान के लिए छोड़ दिया गया। जर्मनी, इटली और जापान इस बात पर भी राजी हो गए कि यदि उनमें से किसी एक पर ऐसे देश ने आक्रमण किया जो एशिया या यूरोप में तब तक युद्ध में सीधा शामिल न हुआ हो, तो दूसरे दोनों देश उसकी सहायता करेंगे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अमेरिका को युद्ध से बाहर रखना था, लेकिन अमेरिका जापान की हरकतों से अब काफ़ी चिढ़ चुका था। लेकिन फिर भी उसने जापान में अगली गर्मी तक आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को नहीं रोका, क्योंकि अमेरिका को डर था कि ऐसा करने पर जापान दक्षिण पूर्वी एशिया में नए स्रोतों की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो जाएगा। जब जून 1940 में नीदरलैंड और फ्रांस जर्मनी की बढ़ती सेनाओं के कब्जे में आ गए, तब ईस्ट इंडीज और हिंद चीन बेसहारा हो गए। यह घटना जापान के सामने एक स्वर्ण अवसर के रूप में आई। जापान के विदेश मंत्री मत्सुओका योसुके ने 2 अगस्त 1940 को कोनोए के मंत्रिमंडल में घोषणा की थी कि हमारी वर्तमान नीति का उद्देश्य जापान, मंचूरिया और चीन को मिलाकर विशाल पूर्व एशिया सह समृद्धि क्षेत्र स्थापित करना होगा जो शाही पथ की महान आत्मा पर आधारित होगा। इसमें फ्रांसीसी, इंडो चीन और नीदरलैंड के ईस्ट इंडीज को विशाल पूर्व एशिया सह समृद्धि क्षेत्र में मिलाना स्वाभाविक है। आवर प्रेजेंट पॉलिसी विल एम एट एस्टेब्लिशिंग द ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रोस्पेरिटी स्फेयर लिंकिंग जापान, मंचूरिया एंड चाइना बेस्ड ऑन द ग्रेट स्पिरिट ऑफ द इम्पेरियल वे। इट इज नेचुरल टू इंक्लूड फ्रेंच इंडो चाइना एंड द नीदरलैंड्स ईस्ट इंडीज इन द ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रोस्पेरिटी स्फेयर। 2 जुलाई 1941 को साम्राज्यिक सम्मेलन के फैसले के बाद कोनोए मंत्रिमंडल ने दक्षिणी इंडो चीन में और सैनिक भेजने की ठानी। उसने अमेरिका का फ्रांसीसी इंडो चीन की तटस्थता का सुझाव भी मानने से इनकार कर दिया। जर्मनी ने पहले से ही 22 जून 1941 को रूस पर आक्रमण कर दिया था। इस घटना ने रूस और जापान के बीच युद्ध की संभावनाओं को बहुत कम कर दिया। 24 जून को जापानी सेना ने दक्षिण की ओर बढ़ने के इरादे से इंडो चीन में प्रवेश किया। जापान ने थाईलैंड के साथ भी तटस्थ समझौता कर लिया। अमेरिका ने जापानी संपत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया और जापान को पेट्रोलियम के पदार्थों के निर्यात पर रोक लगा दी। ब्रिटानिया ने भी ऐसा ही किया। असल में जापान को अपने सैनिक कार्यों के लिए जिस महत्वपूर्ण तेल की जरूरत थी उससे उसे वंचित कर दिया गया। इन व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण जापान ने अपने नीति में महत्वपूर्ण निर्णय लिया। चूंकि वह कच्चे माल के लिए अमेरिका पर निर्भर था, इसलिए अमेरिका व्यापार के बिना वह ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। इसके बाद हुई समझौता वार्ता में तनाव को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों पक्षों के विचार अब एक दूसरे के प्रतिकूल हो चुके थे। जापान चाहता था कि अमेरिका चीन में उसकी स्थिति को मान्यता दे दे, जबकि अमेरिका चाहता था कि वह वहां से बाहर हो जाए। 6 दिसंबर 1941 को हुए एक शाही सम्मेलन में जापान ने आगे की समझौता वार्ता के असफल होने की सूरत में अमेरिका से युद्ध करने का निर्णय लिया। अक्टूबर में जब यह साफ नज़र आने लगा कि कूटनीति की कोशिशें नाकाम हो गई है, तो कोनोए की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। अब तो जो ही देखी जो एक सैनिक नेता होने के साथ साथ विस्तारवाद का समर्थक भी था ने सरकार बनाई। दोनों पक्षों के बीच पैदा हुए गतिरोध की समाप्ति की जब कोई संभावना न दिखाई पड़ी, तो जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण बिना चेतावनी दिए किया गया था और इस धारणा पर आधारित था कि जब अमेरिका ने जापान के उन कार्यों का विरोध करने का अटल निर्णय ले लिया था, तो जापान राष्ट्रीय नीति के पूर्वापेक्षित और अभिन्न अंग बन चुके थे। युद्ध के आरंभ में जापान ने कई बार विजय प्राप्त की। अपने शान की चरम सीमा के समय जापान ने अल्यूशियन द्वीपों से लेकर बर्मा तक के क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। लेकिन जून 1942 के बाद जापान की बदकिस्मती की कहानी शुरू हुई, जब मिडवे पर उसे भारी नौसैनिक हार का मुंह देखना पड़ा। अमेरिका की तुलना में जापान के पास न उतनी मानव शक्ति थी और न ही आर्थिक तथा तकनीकी साधन। अमेरिका की पनडुब्बियों ने जापान के आपूर्ति रास्तों सप्लाई लाइंस को तहस नहस कर दिए। जापान स्वयं दक्षिण पूर्व एशिया और उसकी आर्थिक दौलत से जुदा हो गया। अमेरिकी जहाज़ों ने जापान पर बम गिराने शुरू कर दिए और जापान की दुर्दशा होने लगी। जुलाई 1945 में ब्रितानिया, अमेरिका तथा सोवियत संघ के पोट्सडैम घोषणा के अंतर्गत जापान को बिना शर्त हथियार डालने के लिए कहा। हिरोशिमा 6 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त पर गिराए गए परमाणु बमों के बाद जापान के लिए युद्ध को आगे चलाना असंभव हो गया। अंत में उसने 15 अगस्त 1945 को हथियार डालने का निर्णय लिया।